Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Giri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ ॐ कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत पांचवें अध्याय में तेरहवां मंत्र अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः भावग्राह्यमनिड्याख्यम् भावाभावकरं शिवं कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम् उपनिषद की व्याख्या चल रही है। कल के प्रसंग में ही बताया कि जीवात्मा अपने कर्म स्वास्व कर्म और संस्कार यानी वासना के चलते जन्म से जन्मांतर की प्राप्ति करता है। एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त करता है, एक योनि से योन्यांतर की प्राप्ति करता है। ये बात कल के मंत्र के द्वारा स्पष्ट हुआ। अब इस मंत्र के द्वारा ये बता रहे हैं कि उस जन्म से जन्मांतर योनि से योन्यांतर की जो प्राप्ति है उससे छुटकारा कैसे हो, उससे निवृत्ति कैसे हो। समझदार व्यक्ति की ये विशेषता होती है, महापुरुषों की ये विशेषता है, शास्त्र की ये विशेषता है। जो मनुष्य समस्या भोग रहा है और जो अनुभव कर रहा है समस्या का, उसी समस्याओं को दोहराकर उसको उसके सामने बता देना कि इससे तेरे को समस्या हुई है, इस कारण से तुझे कष्ट हुआ है, इतने ही बताना शास्त्र का प्रयोजन नहीं है, महापुरुषों का प्रयोजन नहीं है। शास्त्र और महापुरुषों का प्रयोजन है कि इस समस्या से छुटकारा के लिए तुम्हें ये उपाय करनी है। समस्या बता देना इतनी समाधान नहीं है, उससे छुटकारा के उपाय बता देना, ये शास्त्र की शास्त्रता है, गुरु की गुरुता है, महापुरुषों की महानता है। ये तो पता चल गया कि जीवात्मा को एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म की प्राप्ति कैसे होती है, लेकिन उससे छुटकारा कैसे होगी ये भी तो बताना जरूरी है। तो दोनों बता देंगे तो छूटने वाला छूटना कोशिश करेगा, फंसने वाला फंसता रहेगा। अनादि अनंतम कलिलस्य मध्ये, यदि तुम छूटना चाहते हो, जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हो, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। इस मंत्र के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, तत्पद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को बताने जा रहे हैं। इससे पहले के प्रसंग में तोमपद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ बताया था कि तोमपद कैसा है, वाच्यार्थ कैसे फंसता है जन्म से जन्मांतर को। अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्ये, एक तत्व है जो हमारे पास विद्यमान है। यहां कलिलस शब्द का अर्थ होता है अंतकरण, कलिल शब्द का अर्थ होता है कोमल, नरम, कोमल, नाजुक, कलिल। गर्भस्तुति में, भागवत के गर्भस्तुति में बताया है, जीवात्मा जब गर्भाशय में पहुंचता है तो तीन रात्रि में वह कलिल रूप को धारण करता है, उसका शरीर कलिल होता है। कलिल, कलिल शब्द का अर्थ यह समझ लेना कि जैसे हम दही जमाते हैं दूध में जामुन डालकर, तो वो पूरी तरह दही भी नहीं बना है और दूध भी नहीं रहा है, उस अवस्था को वो कच्चा दही बोलते हैं ना हम लोग। जब पूरा दही भी नहीं हुआ और दूध का स्वरूप भी खत्म हो गया, तो दूध के रूप में भी नहीं ले सकते, दही को दही के रूप में भी नहीं ले सकते, वो मध्य अवस्था, उसको कलिल बोलते हैं। त्री रात्रि का गर्भ, उसको कलिल बोलते हैं। जैसे त्रिरात्रि का गर्भ कलिल है, अति नरम है, अति संवेदनशील है, इसी तरह का आपका हृदय है, इतना कोमल है, इतना नरम है, इतना संवेदनशील है। उसी के बीच में, कलिलस्य मध्ये, हृदय के बीच में, हृदय में, हृदय को अपना आधार बनाता है। ये हमारा हृदय केवल हमारे लिए रहने के लिए नहीं है, हमारा हृदय परमात्मा के रहने के लिए भी है। परमात्मा ने ये हृदय ऐसा बनाया कि दोनों को रहने के लिए उपयुक्त तो हो जाए, और इस हृदय के माध्यम से दोनों का अनुभव हो जाए। लेकिन जीवात्मा ने यह समझ लिया कि हृदय मेरा है, इसमें केवल मुझे रहना है, तब फिर इस हृदय में दुनिया भर के कचरा भरना शुरू कर दिया। ये हृदय में परमात्मा का भी निवास है, ये यदि निश्चय हो जावे तो हम एक साधारण कोई अतिथि, कोई गेस्ट, जो हमारा चिर परिचित मित्र है, हमारे संबंधी हैं, वो जब कभी अपने घर में आते हैं और आने की सूचना मिलती है कि मैं आ रहा हूं एक हफ्ता, दो चार दिन रहना है, तब हम ये सोचते हैं कि क्या कहेगा वो आ रहा है, इसलिए घर के अस्त व्यस्त सामान को हम व्यवस्थित करने लग जाएंगे, घर की सफाई करने लग जाएंगे, अस्त व्यस्त सामान को व्यवस्थित करने लग जाएंगे, चादर और तकिया को बदलेंगे, तकिया के खोल को बदलेंगे, चादर नया चादर बिछाएंगे। क्यों इतनी तैयारी करते हैं? तो ताकि वो आने वाला व्यक्ति ये देखकर ये न कहे कि ये कैसा गंदा आदमी है, ये रहना भी नहीं जानता है, अपने सामान की व्यवस्थित भी रही नहीं रखता, कैसा लापरवाही आदमी है, कहीं ये न कह दे। और इस आशय से कि वो आके देखते ही वो प्रसन्न हो जाए, क्या व्यवस्थित है। तो एक साधारण व्यक्ति जब इस तरह आपके घर में आता है तो आप इतनी सजग और सावधान होकर उसकी प्रसन्नता के लिए इतनी सफाई, इतनी स्वच्छता, इतनी व्यवस्थित कर्म करने लग जाते हो। वह तो परब्रह्म परमात्मा है, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तो फिर अपने हृदय को गंदा और इतना कचरा से क्यों भर रहे हो? तुमको ये ख्याल क्यों नहीं हो रहा है? उस आने वाले अतिथि से भी अनंत गुणा गुण गुणी व्यक्ति है, उस आने वाले व्यक्ति से भी अनंत गुणा दयालु है, कृपालु है, हितैषी है, उपकारी है, शुभ चिंतक है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे हृदय में जो विद्यमान वासनाएं और कचरा हैं उसको देखकर उसके मन में खिन्नता न हो जाए। घर की सफाई से भी हृदय की सफाई का महत्व जो देता है वो महापुरुष होता है। हम तो केवल भौतिक और स्थूल कर्म में आसक्त हुए हैं, केवल भौतिक सफाई की मत ध्यान देते हैं। घर की सफाई होनी चाहिए, कपड़े की सफाई होनी चाहिए, तो बात ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर की सफाई की जरूरत नहीं है, कपड़े की सफाई की जरूरत नहीं है, देह की सफाई की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। इससे ज्यादा महत्व हृदय की सफाई की आवश्यकता है। हृदय में कचरा न हो, वासना न हो। कलिलस्य मध्ये, ये जो हृदय है केवल तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है, परमात्मा ने अपने लिए भी बनाया है, इसलिए वो भी इसमें ही रहना है। उसको भी कौन है वो इस हृदय में रहने वाला? अनादि अनंतम। जब हमारी अस्तित्व नहीं था, हम जीव बने नहीं थे, हम कर्ता नहीं बने थे, भोक्ता नहीं बने थे, उस समय भी वो था, इसलिए वो अनादि है। हालांकि हम भी अनादि, यानी जीव भी अनादि है, लेकिन हमारी अनादिता को परमात्मा जानता है, हमारी अनादिता को हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी अनादिता को परमात्मा जानता है। अर्थात हमारी आदिपना को हम नहीं जानते हैं, हमारे आदिपना को परमात्मा जानता है। परमात्मा की दृष्टि में हम अनादि नहीं है, हम आदि वाले हैं, क्योंकि वो जानता है, लेकिन हमारी दृष्टि में हम अनादि हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब हमारा अस्तित्व शुरू हुआ है। उसी को अनादि कहा, परमात्मा को अनादि कहा। आजकल तो ऐसे ऐसे परमात्मा हैं, ऐसे ऐसे धर्म हैं जो अपने परमात्मा को शादी मानते हैं और बर्थडे मनाते हैं। अरे भाई, परमात्मा का जन्म ही नहीं हुआ, वो अनादि है, काहे को बर्थडे मनाते हो, काहे के जन्मदिन मनाते हो? लेकिन हम मनाते जा रहे हैं, एक तरफ ये भी कहते जा रहे हैं कि परमात्मा अनादि है, अजन्मा है, दूसरी तरफ कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्माष्टमी भी, राम नवमी भी मनाते जाते हैं। ये तो राम का जन्म और कृष्ण का जो जन्म हम मनाते हैं, ये कृष्ण यानी वो परमात्मा कृष्ण के रूप में व्यक्त हुआ हुआ तिथि है, परमात्मा का जन्म नहीं है, परमात्मा कृष्ण के रूप में व्यक्त हुआ। परमात्मा का जन्म नहीं है, परमात्मा राम के रूप में व्यक्त हुआ। यूं तो वेदांत की दृष्टि से तो ये कई रज कह देते हैं कि आपका भी जन्म नहीं है, आप मनुष्य के रूप में व्यक्त हुए। जब आप मनुष्य के रूप में व्यक्त हुए थे उससे भी पहले आपका अस्तित्व था। जब आपका अस्तित्व पहले ही था तो फिर आपका जन्म कैसे हो गया? इसीलिए तो आपको भी अनादि कहा जाता है, अनादि अनंतम। अनंत शब्द का अर्थ होता है अंत, जिसका निश्चित नहीं है, यानी संभव नहीं है, या निश्चित का अर्थ संभव नहीं है। अनंत शब्द का अर्थ होता है प्रध्वंसा भाव, जिस पर संभव न हो। जैसे तुम घर बना रहे हो, प्रेमपुरी आश्रम इस समय खड़ा है, ये प्रध्वंसा भाव से युक्त है। किसी न किसी वर्ष, किसी न किसी संवत्सर में, किसी न किसी दिन इसका अस्तित्व धराशायी हो जाएगा। आप देखते हो ना, सड़क में कहीं जाओ, पुराने पुराने चालियां, पुराने पुराने आवास क्षेत्र, घर, जिसको बंबई की भाषा में चाली बोलते हो, तुम्हारे ही सामने वह चालियां टूटते हुए देखा कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ है? वह प्रध्वंसा भाव हो गए वो, और देखते देखते उस जगह वो टूट गए, उसकी जगह फिर दूसरी बिल्डिंग खड़ा हो गया। इसका मतलब वह बिल्डिंग नया खड़ा हुआ, पहले जब चाली था तो वह बिल्डिंग का प्राग अभाव था। उस बिल्डिंग का प्राग अभाव था जिस समय चाली था वहां, और जब चाली टूट गया तो चाली का प्रध्वंसा अभाव हो गया, बिल्डिंग का अनन्य अभाव हो गया। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि चाली ही प्रध्वंसा भाव से ग्रसित हो गई, वो जो खड़ा बिल्डिंग है वो भी प्रध्वंसा भाव से युक्त है। एक दिन न एक दिन वो भी धराशायी होगा। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष कब तक टिकेगा? वो भी एक दिन खंडहर में बदल जाएगा, एक दिन वो भी धराशायी होने वाला है। ये क्या है? साधी अंत वाले हैं ये सब, उनके आदि हुआ, स्टार्ट हुआ और ये अंत होगा होगा। लेकिन इस तरह परमात्मा का अंत नहीं होगा, वो अनादि अनंत है। ऐसा कहां है? तो बोले कलिलस्य मध्ये, तुम्हारे हृदय में वो अनादि और तुम्हारे हृदय में अनंत रहेगा वो। तो हृदय में अनादि है तो इसका मतलब हृदय भी तो अनादि होना चाहिए ना। हृदय में अनंत है तो इसका मतलब हृदय भी अनंत होगा, तब न वो हृदय ही अंत वाला होगा, तो परमात्मा अनंत कैसे होगा हृदय में रहने वाला? ऐसा भी आप प्रश्न कर सकते हो। लेकिन हृदय अंत होने वाला होने पर भी हृदय में रहने वाला आत्मा का अंत नहीं होता। जैसे घड़े का अंत होने पर भी घटाकाश का अंत नहीं होता, क्योंकि वह घटाकाश घटाकाश में न रहकर महाकाश के रूप में अवस्थित होता है, इसलिए घटाकाश का अंत होने वाला नहीं है। उस आकाश का अस्तित्व समाप्त हो जाता होता तब तो आकाश को भी अंत वाला मानना पड़ता है। घटाकाश के सही साथ साथ ही आकाश का अंत हो गया, ऐसा तो कोई मानेगा नहीं ना। घट अंत, घट के अंदर रहता हुआ भी वह घटाकाश अपने स्वरूप में वह अंत वाला नहीं है, अनंत है। इसी तरह अंत होने वाला हृदय में रहता हुआ भी वह परमात्मा अंत होने वाला नहीं है, वह अनंत है। उसके लिए ऐसे हृदय न जाने कितने बनेंगे और कितने बिगड़ जाएंगे। उस आकाश के लिए ऐसे घट कितने बनेंगे और कितने बिगड़ जाएंगे, कितने बनेंगे कितने फूटेंगे, बनते रहेंगे फूटते रहेंगे। जिस समय घट बना घटाकाश दिखा, जिस समय घट फूट गया घटाकाश की प्रतीति समाप्त हो गई। घटाकाश की प्रतीति समाप्त होने का अर्थ यह नहीं समझना कि घटाकाश का भी अंत हो गया, वो महाकाश के रूप में सुरक्षित है। आपके हृदय का नाश हो गया तो ये नहीं समझना कि परमात्मा का भी नाश हो जाएगा। परमात्मा सुरक्षित है, आत्मा सुरक्षित है तो परमात्मा और ज्यादा सुरक्षित है भाई। हृदय की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको? हृदय की आवश्यकता तो उसको प्रतीत होने के लिए, व्यक्त होने के लिए आवश्यकता पड़ी, क्योंकि तुम जो बात कहोगे, जो भावना है वो हृदय में होगी और परमात्मा उसी हृदय से ही तुम्हारी बात जान सकता है, समझ सकता है। तो कई भाषा होती है, जैसे कोई कान से शब्द नहीं सुनते और वाणी से बोल नहीं सकते, ऐसे गूंगे बहरे होते हैं, उनको समझाने की भाषा होती है। उनको आप शब्द प्रयोग करके यदि समझाना चाहो तो वो नहीं समझ पाएंगे, बैखरी वाणी के द्वारा उनको आप नहीं समझा पाओगे। उनको समझाने के लिए सांकेतिक भाषा है, उस सांकेतिक भाषा को ही मध्यमा वाणी कहते हैं, उस सांकेतिक भाषा को ही मध्यमा वाणी। उन भैरवों को, गूंगों को समझाने के लिए हाथ की इशारा के साथ साथ वह शब्द उच्चारण नहीं करता, लेकिन ओठ और प्राण का प्रयोग करता है, ओठ चलाता है और साथ साथ हाथ भी संकेत करता है, और उस भाषा से वह बहरा और मूंगा समझ लेता है आपकी भाषा, आप क्या कहना चाहते हो। और वह भी अपनी मध्यमा वाणी के द्वारा और हाथ की इशारा के द्वारा ही अपनी बात तुम्हारे सामने रखता है और आप समझ जाते हो कि वह क्या कहना चाहता है। कान वालों के साथ बोलने भाषा दूसरी है, कान और वाणी जिसके पास नहीं है उनके साथ बोलने की भाषा दूसरी है, परंतु परमात्मा के साथ संवाद करने की भाषा क्या है, माध्यम क्या है? आप हाथों की इशारा से परमात्मा को इस बात करना चाहो तो नहीं सुनेगा वो, शब्दों से परमात्मा के साथ वार्ता करने चाहो तो नहीं सुनेगा वो, उससे बात करने के लिए तो तुम्हें केवल हृदय की आवश्यकता पड़ती है। और उस हृदय में परा नाम की जो वाणी है, परा पश्यंती, परा नाम की वाणी मूलाधार में रहती है, पश्यंती नाम की वाणी हृदय में रहती है, मध्यमा नाम की वाणी कंठ में रहती है, और बैखरी वाणी तालु मूल आदि के द्वारा वह बिखर जाती है। इस समय हमारी वैखरी वाणी बिखर रही है, आपकी वैखरी वाणी बिखर नहीं रही है, आपके पास परा पश्यंती मध्यमा तीन वाणियां हैं, इस समय तीन वाणियों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन चौथी वाणी का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे यहां चौथी वाणी का भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो तालु मूल आदि के द्वारा मेरी परा पश्यंती मध्यमा वाणी बिखर कर आप तक पहुंच रही है, इसको वैखरी वाणी बोलते हैं। परमात्मा से वार्ता करनी हो तो पश्यंती नामक वाणी के द्वारा करना पड़ेगा, पश्यंती नामक वाणी हृदय में रहता है, और तुम अपने उसी हृदय के माध्यम से पश्यंती नामक वाणी के द्वारा परमात्मा से संवाद कर सकते हो, और परमात्मा उसी पश्यंती नामक वाणी में ही अपने समाधान के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दिखाते हैं और आपको समाधान प्राप्त होता है। अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्ये, परमात्मा को आपके हृदय में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप उसी हृदय में बैठे हो, इसीलिए आपके साथ मित्रता करने के लिए, आपके हित करने के लिए, आपका उपकार करने के लिए, आपके संवाद को सुनने के लिए वह परमात्मा आपके ही हृदय में विद्यमान है। विश्वस्यैकम्, आगे कहा विश्वस्य स्रष्टारम्, वह परमात्मा सारे विश्व का स्रष्टा है, रचयिता है, उसी की सृष्टि है ये, ये जो अभी वर्तमान में दिख रहा है विश्व उसकी सृष्टि है। आप भी अपने विश्व का स्रष्टा है और परमात्मा भी विश्व का स्रष्टा है, और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि परमात्मा की सृष्टि को भी तुम अपना मानते हो और तुम्हारी सृष्टि तो तुम्हारी है ही है, लेकिन परमात्मा कभी भी अपनी सृष्टि को अपना नहीं मानता और तुम्हारी सृष्टि को भी अपना नहीं मानता। यही तो परमात्मा के सुखी होने का राज है। परमात्मा क्यों सुखी होता है? उसका राज यही है। परमात्मा जिन सृष्टियों को अपनी माया वृत्ति के द्वारा रचना करता है, सृष्टि करता है, खुद अपने द्वारा सृष्टि किए हुए वस्तुओं को भी वह अपना नहीं मानता है, तो तुम्हारे सृष्टि को वो अपना क्यों मानेगा? जब ये दृश्य प्रपंच स्थूल और सूक्ष्म व्यक्ताव्यक्त प्रपंच को वो अपना नहीं मानता है तो उसको कोई झंझट नहीं है, इसलिए वो आनंदित है। और हमें ये झंझट क्यों है? क्योंकि हम तो परमात्मा की सृष्टि को भी मेरी सृष्टि मानते हैं और साथ में अपनी सृष्टि को भी अपनी सृष्टि मानते हैं। दो दो समान परमात्मा की सृष्टि से जिसको संतुष्टि नहीं होती है वह समानांतर उसी के साथ साथ दूसरा पैरेलल पर सृष्टि करता है। समानांतर सृष्टि, समानांतर सृष्टि क्या है? ईश्वर की सृष्टि एक पुरुष है तो उससे उसको संतुष्ट न होकर उस पुरुष सृष्टि में उसके समानांतर पति की सृष्टि करके वो अपने कब्जा में ले लेता है, तब वो सुखी दुखी होता है। परमात्मा की सृष्टि स्त्री की सृष्टि है, उतनी से संतुष्टि नहीं होती है तो उसको पत्नी के रूप में फिर अपनी सृष्टि को जोड़ता है, तो परमात्मा की सृष्टि स्त्री अपनी सृष्टि पत्नी दोनों मिलाकर कब्जा करता है, तब फिर वो सुखी दुखी होता है। परमात्मा की सृष्टि मिट्टी है, उससे उसको संतुष्टि नहीं हुई तो परमात्मा की सृष्टि धरती है, उसको उतने से संतुष्टि नहीं हुई तो उस धरती में मेरा ये भाव जोड़कर फिर वह उसको कब्जा करता है, उसको नापता है, उसकी सीमा किले गाड़ देता है। परमात्मा की सृष्टि में दीवार लगा देता है,